नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का आज जवाब दे सकते हैं। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने शून्यकाल के दौरान कहा कि सभी सांसद प्रधानमंत्री का भाषण सुनना चाहते हैं, लेकिन अगर कांग्रेस पार्टी ऐसा नहीं चाहती तो वो उसकी अपनी राय है। श्री रिजिजू ने सदन में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के इस आरोप को खारिज किया कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी देश के हितों के बारे में बोलना चाहते थे, लेकिन उन्हें धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने नहीं दिया गया। उन्होंने कहा कि श्री गांधी संसदीय नियमों का पालन नहीं कर रहे थे। श्री मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि केवल राज्यसभा ही एकमात्र सदन नहीं है, बल्कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिलकर ही संसद बनती है। लोकसभा ने राष्ट्रपति के अभिभाषण को धन्यवाद प्रस्ताव को ध्वनिमत से पारित कर दिया है। पहले स्थगन के बाद दोपहर 12 बजे सदन की कार्यवाही फिर शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा शुरू की। श्री बिड़ला ने विपक्षी सदस्यों द्वारा धन्यवाद प्रस्ताव पर लाए गए संशोधनों पर मतदान कराना चाहा, लेकिन सदन ने उसे अस्वीकार कर दिया। इस बीच राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लाए गए धन्यवाद प्रस्ताव पर आगे चर्चा शुरू हो गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार को बड़ा झटका देते हुए आज लगभग 20 लाख राज्य कर्मचारियों के लंबित महंगाई भत्ते डीए का भुगतान करने के निर्देश दिए हैं। न्यायालय ने राज्य सरकार को अगले महीने की 6 तारीख तक 25% बकाया डीए का भुगतान करने का आदेश दिया है। न्यायालय ने अपने उन पुराने निर्देशों की पुष्टि की है जो वर्षों से लंबित थे। डीए विवाद 2008 से 2019 से चल रहा है, जिसमें कर्मचारियों का दावा है कि उन्होंने कानूनी रूप से हकदार होने के बावजूद भत्ते से वंचित रखा गया था। भारत ने कहा है कि 1 अरब 40 करोड़ भारतीयों के लिए ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करना केंद्र सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आज नई दिल्ली में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने संवाददाता सम्मेलन में कहा कि उद्देश्यपूर्ण बाजार स्थितियों और बदलते अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों के मद्देनजर सीमित ऊर्जा स्रोत पर नहीं बल्कि इसके विविध स्रोतों पर ध्यान देना सरकार की रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा है। श्री जायसवाल ने कहा कि वेनेजुएला ऊर्जा क्षेत्र में भारत का दीर्घकालिक साझेदार रहा है। भारत अपनी नीति के अनुरूप किसी भी कच्चे तेल के नए आपूर्ति विकल्पों के वाणिज्यिक फायदों की तलाश में रहेगा, जिसमें वेनेजुएला भी शामिल है। भारत और खाड़ी सहयोग परिषद जीसीसी ने आज नई दिल्ली में मुक्त व्यापार समझौते के लिए संदर्भ शर्तों पर हस्ताक्षर किए। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद के 6 देशों के साथ मुक्त व्यापार समझौता एक और महत्वपूर्ण व्यापार गलियारे के द्वार खोलेगा। श्री गोयल ने बताया कि भारत जल्द ही अमरीका के साथ हुए व्यापार समझौते की पहली किस्त की घोषणा करेगा। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में आज सुबह सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में एक माओवादी मारा गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार इलाके में सशस्त्र माओवादियों की मौजूदगी की जानकारी मिलने के बाद सुरक्षा बलों के संयुक्त दल ने जिले के दक्षिणी हिस्से में तलाश अभियान शुरू किया। इलाके में तलाश अभियान जारी है। इस बीच बीजापुर में 8 महिलाओं सहित 12 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है। भारत के पहले सहकारी राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी का आज नई दिल्ली में शुभारंभ होगा। सहकारिता मंत्री अमित शाह इसका उद्घाटन करेंगे। ये देश में समावेशी और जन केंद्रित परिवहन को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव अंतोनियो गुतरश ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन करने के लिए भारत के नेतृत्व की प्रशंसा की है। उन्होंने कहा कि AI अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के मामले में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। उन्होंने कहा कि तेजी से विकसित हो रही AI तकनीक की चुनौतियों और अवसरों का विश्लेषण करने के लिए सभी देशों को एक साथ आना चाहिए। ईरान और अमेरिका के बीच परमाणु वार्ता शुक्रवार को ओमान में शुरू होगी। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कल ये घोषणा की। ये घोषणा वार्ता के प्रारूप और स्थान में बदलाव को लेकर उत्पन्न हो रही समस्याओं के बाद आई है। महिला प्रीमियर लीग क्रिकेट के फाइनल में दिल्ली कैपिटल्स का मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से होगा। ये मैच आज शाम 7:30 बजे वडोदरा के BCA स्टेडियम में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।